कृष्णा हरे हरे,
हरे
राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम मंदिर के भाग्यशाली भक्तों, भगवद गीता के भक्ति शास्त्री के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अध्याय के अंतर्गत तीसरे विभाग का आज हम शुभारंभ करेंगे। कर्मों को ज्ञान के स्तर के ऊपर समझ के कर्म करना। अगर काम कर रहे हैं उसका ज्ञान हो तो फिर बंधन नहीं पड़ता है। तो ज्ञान के स्तर पे कर्म को समझना, ये है विभाग 16 से 24 तक। पहला श्लोक पढ़ रहे हैं 16। किमकर्मेति कव्यो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभा। किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्म और अकर्म क्या है। इति कव्यो अपि, कव्यो का मतलब बुद्धिमान, कवियों का मतलब बड़े विद्वान। अपि मतलब वो भी, अत्र मोहित, इस बात में मोहित हो जाते हैं, पता नहीं क्या है कर्म क्या है अकर्म, तो बड़े बड़े विद्वान भी इसमें मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्षा में, इसलिए मैं आपको कर्म के विषय में, कर्म के विषय में जो भी है सब कुछ बताने जा रहा हूं। यज्ञात्वा, उसको अगर जान लोगे, मोक्ष से अशुभात, बिना किसी संदेह के मुक्त हो जाओगे। किससे, कर्म के बंधन से। मैं कर्म के विषय में बताने जाने जा रहा हूं। भगवान कह रहे हैं जिसको समझने से कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन ने, इसमें कौन सी बात है, बोला बड़े बड़े विद्वान भी इसमें मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। किसके विषय में, कर्म और अकर्म के विषय में। तो अब हम इसके ऊपर तात्पर्य को देखते हैं। अर्जुन ऐसे पूछ रहा है भगवान से, क्यों ऐसे कोई कर्म के विषय में कोई विशेष बात है कि आप मुझे ये बताना चाह रहे हो। सर भाई, यार किसी को बोले कर्म क्या है तो कहे, सर हम तो रोज ही कर रहे हैं। तो अर्जुन को आश्चर्य लगा। तो भगवान कहते, निश्चित रूप से। बोला कौन से कर्म के विषय में कह रहे हैं, जो मुक्ति का साधन है। वो कर्म जो मुक्ति का साधन है वो निश्चित रूप से समझना आवश्यक है। बोला फिर ज्ञान क्या है, कोई पूछे ज्ञान क्या है। बोला कर्म के बिल्कुल विपरीत है, उसको कहते हैं अकर्म। कर्म के विपरीत जो है उसका नाम है ज्ञान, और वो है अकर्म। तो अकर्म की परिभाषा क्या हुई, ज्ञान में स्थित होके कर्म। और वो ज्ञान क्या है, भगवान के हम सेवक हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें तो वो अकर्म हो जाएगा और बंधन में नहीं डालेगा। ये बात समझ में आ रही है ना, बहुत सरल है ना, इसको समझना है सिर्फ थोड़ा सा। बड़े बड़े बुद्धिमान भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं सीधा, ये कर्म जो शब्द यहां है, इस कर्म को हमको क्या समझना चाहिए। पहले ये है वैसे ये कर्म जो शब्द है यहां, उसको श्री प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना लिया है। इसका किस कर्म को प्रभुपाद जी कृष्ण भावना में लेते हैं, निष्काम कर्म योग को। प्रायः निष्काम कर्म योग को कृष्ण भावना के निकट समझने के कारण प्रभुपाद जी प्रायः ऐसे लिखते हैं बहुत जगहों पे। आपने पढ़ा होगा दूसरे अध्याय में बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति, तीनों नाम प्रभुपाद जी तीनों लेते हैं साथ में। तो प्रभुपाद जी शुरू कहते करते कहते हैं, वो कर्म जो कृष्ण भावना में है और जो कर्म पूर्व आचार्यों के मार्ग में किया जाए, उसका वर्णन किया है 15वें श्लोक में। क्या पढ़ा था हमने, जैसे पूर्वोत्तरम कृतम, जैसे पूर्व ने कार्य किया ऐसे कार्य करो। पढ़ो 15 श्लोक पढ़ो। जैसे पूर्व मेरे शिष्य या व्यवस्मान ने किया वैसे कार्य करो, अथवा जैसे जनक आदि ऋषियों ने कार्य किया ऐसे कार्य करो, तो बंधन नहीं पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी वो बात कह रहे हैं। प्रभुपाद जी शुरू कहाँ से करें? 15वें श्लोक को साथ लेके 16वें श्लोक को शुरू कर रहे हैं। और ये 15वें श्लोक में कहा गया है, बोला ऐसे करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी, क्योंकि एक जो कार्य हो वो स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, वो किसी के निर्देश में होना चाहिए। स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, लिखा है ना, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, मार्गदर्शन में होना चाहिए, गुरु वर्ग के मार्गदर्शन में होना चाहिए, पूर्व आचार्यों के बताए हुए मार्ग में होना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावना के कार्य सदा ही अधिकृत, प्रभुपाद जी ने लिखा है, अधिकृत जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो आध्यात्मिक नेता हैं, जो परंपरागत आते हैं, जैसे इस अध्याय के आरंभ में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम, प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं। तो बात क्या, एक विशेष प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कोई कार्य स्वतंत्र करना उचित नहीं है, कार्य सदा परंपरागत निर्देश और मार्गदर्शन में करना चाहिए। ठीक है, अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, सूर्यदेव को पहले भगवान ने दिया, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे धरती के ऊपर ये ज्ञान आया। तो इसी प्रकार से हमको भी अर्जुन से जो अब ये आ रही है परंपरा, जो भगवान ने भगवत गीता दिया, ऐसे ही मानना चाहिए। ये प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, अगर ऐसे नहीं करें तो बड़े बुद्धिमान भी भ्रमित हो सकते हैं। और इसी विचार से भगवान अर्जुन को आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कर्म के विषय में समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं प्रभुपाद ने, उसको बहुत स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है, क्या समझाना चाहते हैं? नहीं, इसी कारण से भगवान ने यह निर्णय किया कि अर्जुन को साक्षात कृष्ण भावना का ही उपदेश दिया जाए, कृष्ण भावना के कर्मों का ही उपदेश दिया जाए। ये लाइन से मिली ना आपको? नहीं मिली है ना? इसके उपरांत है, अब प्रभुपाद जी इस बात को कहाँ ले जा रहे हैं, बोला कर्म कहाँ लिखा है, कोई पूछे आपसे कर्म किसको कहते हैं, चलो पहले कर्म किसको कहते हैं इसको बात को समझें, फिर आगे चलें। कर्म जो वेदों में वर्णित है, कर्म वो है जो वेदों में वर्णित है और जिसके लिए निर्देश है करो। और कर्म के भी अपने विभाग है, नित्य कर्म है जैसे रोज का संध्या वंदन आदि है, नैमित्तिक कर्म है जैसे साल में उत्सव है कुछ, ये नैमित्तिक कर्म है, और ऐसे कुछ जो है जिसको कहते हैं सकाम कर्म, सकामनाओं के साथ कर्म है, ऐसे कर्मों के भी बहुत बड़ा विभाग वो विभाग है कर्मों का। तो वर्णित कहाँ है? वेदों में। वेद किसने दिया? भगवान ने। और हमारे धर्म का नाम क्या है? वैदिक धर्म। तो प्रभुपाद जी, धर्म देता कौन है? पहले जो धर्म देता है वही कर्म देता है, ये बात समझ में आ रही है भाई? जो धर्म देगा वही कर्म बताएगा। तो लिखा है कि धर्म तो केवल भगवान दे सकता है, धर्मात् तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान यहां स्वयं कृष्ण ही तो बता रहे हैं अर्जुन को, तो यही तो धर्म है। प्रभुपाद जी को ले कहां जाना है हमको, जहां से कथा शुरू की है कि पूर्व आचार्यों के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए, उस बात को कल हमने कहा था, वो 12 महाजनों के नाम प्रभुपाद ने आज 16वें अध्याय में लिखे, क्योंकि ये बता रहा है धर्मराज, और वो कहता है अपने मन से नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इसलिए जो धर्म ने जिसको जिन्होंने धर्म को समझा है उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। फिर 12 महाजनों के नाम लिखे हुए देखो पुस्तक में लिखे, ब्रह्मा शिव नारद मनु कुमार कपिल प्रहलाद भीष्म सुखदेव यमराज जनक और बलि, ठीक है। और फिर है सावधानी कि इन्हीं के चरण चिन्हों में चले किसी मनमाने मार्ग दर्शन करने वाले ज्ञानी तथाकथित के मार्ग में नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो बता नहीं सकता है धर्म क्या है। तो अहितु की कृपा से भगवान ने अपने भक्तों के लिए अर्जुन के माध्यम से क्या सिखाया है, एक शब्द लिखा है प्रभुपाद ने, क्या शब्द नहीं एक शब्द लिखा है कर्म, दो शब्द लिखे क्या कर्म है और क्या अकर्म है, नहीं लिखा है दोनों लिखा है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये अर्जुन को अहितु की कृपा करके हमको समझाया। इससे हमें क्या समझना है, भगवान हमको सिखाना ये चाह रहे हैं कि हम अकर्मी कैसे बने। देखो कहीं कहीं यहां नहीं, कहीं कहीं अकर्मी की परिभाषा दूसरी है, उसका मतलब निकम्मापन। तो यह निकम्मापन नहीं है अकर्मी की परिभाषा, यहां है सब कर्म भगवान के अर्पण। वो है अकर्मी कौन है, जो सारे कर्म भगवान के लिए करता है, न कर्तापन का अहंकार है न भोक्तापन की इच्छा है, वो कर्म अकर्म कहलाता है, अपने स्वरूप में स्थित होकर कर रहा है। मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरा स्वामी है, उसकी संतुष्टि के लिए कार्य करना मेरा कर्तव्य है, उसकी प्रसन्नता मेरा उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आगे, भौतिक बंधन से केवल कृष्ण के लिए किए जाने वाले काम ही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये हमारा 16वां श्लोक पूरा हुआ। तो इसमें मुख्य 15 श्लोक से 16 श्लोक तक पूर्व आचार्यों के महाजनों के मार्गदर्शन में कार्य करेगा तो बंधन से मुक्त हो सकता है। अब 17वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, कर्मणोऽपि बोधव्यम् बोधव्यम् च विक्रमणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्म की गति बहुत गहन है का मतलब समझना बहुत कठिन है, कर्म की गति गहन का मतलब बहुत कठिन है। इसलिए 3 बार कहा बोधव्यम बोधव्यम बोधव्यम। बोधव्य का मतलब ये आपको मैं समझा रहा हूँ बुद्धि दे रहा हूँ, ये आपको मैं समझा रहा हूँ। क्या समझाओगे भगवान, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, तो तीनों का विभाजन आपको समझा रहा हूँ। अब अर्जुन कहता है बड़े बड़े विद्वान भी इसको समझने में अगर मोहित हो जाते हैं तो मैं कैसे समझ सकता हूं। तो भगवान कहते हैं मैं समझा रहा हूं, इसका मतलब जो 16वें श्लोक में जो भगवान ने कहा बड़े विद्वान, तो अर्जुन ने कहा फिर मैं कैसे समझ पाऊंगा, तो भगवान कहते मैं समझा रहा हूं। तो इस बार 3 बार का बोध, मैं समझा रहा हूं, मैं समझा दूंगा आपको, तीनों समझा दूंगा, ठीक है। तो इन तीनों शब्दों का अब अर्थ समझ लेते हैं। पहले कर्म वो है जो वेदों में वर्णित है, विक्रम जो है वो है जो उसके विपरीत है, मनमाना काम जो वेदों के विपरीत है, और अकर्म वो जो भगवान को अर्पण करके भगवान को ही अर्पण किया जाए जिसमें कर्ता भोक्ता बन का कोई भाव न हो, ये अर्थ है। प्रभुपाद जी विक्रम का एक और अर्थ लिखते हैं, वो अर्थ आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। वो अर्थ है जो काम कृष्ण भावना में नहीं है वो सारा विक्रम है, प्रभुपाद जी की परिभाषा है ये। अब चक्रवर्ती पाद के भाव को सुन लीजिए। पहले विक्रम के विषय में सुन लो, जो करने से दुख मिलता है। विक्रम निषेध कर्म, विक्रम का मतलब निषेध कर्म, जो अगर करेगा तो सदा है, सदा दुख पाएगा। संकट, संसार में संकट, मरने के बाद नरक, तो ये तो समझना चाहिए ना। और फिर कहते हैं अकर्म, ये भाषा दूसरी, भाई अकर्मी कौन है? बोला सन्यासी। कहते कर्म सब छोड़ दो, भाई सन्यासी एक स्तर के ऊपर कर्म सब छोड़ते हैं ना सन्यास के। ये परिभाषा कौन सी लिखी जा रही है मैं आपको बताऊं। दो शब्द आपने कभी छठा अध्याय पढ़ा है, दो शब्द सुने, योग उरुक्ष योग आरूढ़, सुने दो शब्द ये? वो ना, वो दूसरा है, वो पथ है दो, एक एक नीचे से ऊपर जाना, एक ऊपर से नीचे आना, ये ज्ञान के मार्ग है। ये आरुरुक्ष और आरूढ़। आरुरुक्ष का मतलब साधन में ऊपर जाने का रास्ता, और आरूढ़ का मतलब पहुंच गया ऊपर। इसका अर्थ है साधन और सिद्ध। आरुरुक्ष मतलब जैसे सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, और आरूढ़ का मतलब पहुंच गया। ये छठे अध्याय में दोनों शब्द हैं, योग के लिए और यहां ये ज्ञान के लिए है। तो इसी भाव को ये दो शब्द क्या आज से के? अब आरूढ़ तो आपने सुना, यथा रथ आरूढ़, रथ के ऊपर आरूढ़ भगवान जगन्नाथ है, आरूढ़ का मतलब चढ़ गया, और आरूढ़ का मतलब चढ़ रहा है, रास्ते में है। तो ये दो शब्द आप इसलिए सुन लीजिए कि इसमें पांच श्लोक आगे है, इस विभाग में दो आरुरुक्ष है और तीन आरूढ़ है। तो ये दो शब्द नए समझ में आ गए। अब विक्रम जो है उसको त्यागना चाहिए, क्योंकि वो अमंगलकारी कार्य है। ठीक है, अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। पहले जी प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? जो मुक्ति का इच्छुक है, मिमुक्षु है, ये शब्द ऐसा है हमारी, अगर हम भक्तों की भाषा कहेंगे तो मुक्ति का इच्छुक है का मतलब है भगवान की सेवा का इच्छुक है, संसार की सेवा को त्याग के भगवान की सेवा का इच्छुक है, ये है भक्तों के लिए भाषा। और सामान्य गीता के प्रवचन में कहेंगे जो मुक्ति का इच्छुक है, मुमुक्षु है। और इस शब्द को लेकर समझना चाहिए, मुक्ति के इच्छुक तो बहुत कम है, तो इसको समझने वाले सब नहीं हो सकते। जो मुक्ति का इच्छुक है, किससे? भौतिक बंधन से, प्रभुपाद ने लिखा है। तो उनको तीन चीजें समझनी चाहिए, कर्म अकर्म और विक्रम। और उनकी दूसरी भाषा परिभाषा लिखी है, देखो दूसरी लाइन में प्रभुपाद जी इसके लिए दूसरी परिभाषा लिखी है। क्या लिखा है? पहले को कर्म लिखा है, दूसरे को क्या लिखा है? अकर्म लिखा है। ठीक, अंग्रेजी में लिखा है एक्शन रिएक्शन, और रिएक्शन लिखा है वह, तो वो उसका अर्थ है अकर्म। और विक्रम लिखा है उसके लिए, यहां शब्द है परवर्टेड एक्शन, हाँ निषेध कर्म। ठीक है, अब ये तीनों की परिभाषा प्रभुपाद ने दे दी कि तीन क्या हैं। हम सब समझ गए ना, कर्म अकर्म विक्रम सब समझते हैं ना। अब कर्म करना तो छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ सकते हैं क्या? क्यों नहीं छोड़ सकते? आत्मा सक्रिय है, इसलिए कोई कर्म को कभी नहीं छोड़ सकता, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे कर्म, भगवान सिखा रहे हैं कि कैसे कर्म करो ज्ञान में स्थित होकर। कौन सा ज्ञान? हम भक्तों के लिए स्वरूप ज्ञान, हमारे स्वरूप का ज्ञान कि हम कौन है, आत्मज्ञान कहो, आत्मा का ज्ञान कि आत्मा का काम क्या है, भगवान की सेवा करना, तो ये ज्ञान हमारा है। ज्ञानियों वाला ज्ञान नहीं, ब्रह्म वाला ज्ञान नहीं। तो अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृष्ण भावना में कार्यों को समझने के लिए हमारा भगवान से संबंध क्या है समझना पड़ेगा। प्रभुपाद जी जो ज्ञान लिख रहे हैं यहाँ, ज्ञान जिसके स्तर के ऊपर काम करना चाहिए, वो ज्ञान है भगवान के साथ हमारे संबंध का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भगवान के साथ हमारे संबंध का ज्ञान। और प्रभुपाद जी ने वो लिखा है, देखिए आपने पुस्तक में पढ़ के देख लीजिए, वो यही है जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। और फिर एक लाइन है, उसको तो आप लाल मार्क से लिख लीजिए पक्का, ये भगवत गीता का लक्ष्य है। भगवत गीता में सबको मार्गदर्शन इस लक्ष्य की ओर किया गया है। कौन से लक्ष्य की ओर? नित्य दास की ओर। अब प्रभुपाद जी विक्रम की परिभाषा देखो कैसे कह रहे हैं, इसके विपरीत कोई निर्णय निकाल लिया। ये कौन निकालता है इसके विपरीत निर्णय? मायावादी। हम भी ब्रह्म, भगवान भी ब्रह्म, तो उसके सारे कार्य विक्रम, क्योंकि वो भोक्ता बन रहे हैं, भगवान के प्रतिद्वंदी बन रहे हैं ना। फिर तो प्रभुपाद जी ने विक्रम की परिभाषा क्या लिखा दी, जो स्वरूप के विपरीत कार्य हैं वो सारा विक्रम है। और हमारा स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना, उसके विपरीत जितने कार्य हैं वो सारे विक्रम। तो विक्रम की दोनों परिभाषाएं आपको बोलनी चाहिए। भक्तों में बोलना हो तो ऐसे बोलना चाहिए, पब्लिक में बोलना हो तो विक्रम का मतलब निषेध कर्म, क्योंकि आस्ते आस्ते उनको आगे लाना है तो निषेध कर्म, जो कर्म जिनके लिए शास्त्र ने मना किया है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब विक्रम है। परंतु अगर बहुत उसको इतना कहने के बाद कहेंगे, इससे आगे अगर जाएंगे तो हम हैं कौन, हम आत्मा हैं तो किसके हैं? भगवान के हैं, तो जिसके हैं उसके लिए काम करना चाहिए ना। भाई आप, ये आपका क्या लगता है पिता, ये आप क्या है इसके बेटा, तो ये किसके लिए काम करें? भाई बाप के लिए करे ना। ये क्या लगता है आपका पति, तुम क्या हो पत्नी, तो तुमको किसको प्रसन्न करना चाहिए, पति को या और किसी? ऐसी भाषा बोलने से सामने वाले के कान खुलेंगे कि बात तो ठीक है, तो फिर कुछ भगवान का नाम जगतपति है कि नहीं जगन्नाथ, तो हम वो जो पति है तो उसको प्रसन्न करेंगे कि दुनिया वालों को करेंगे? कब तक दुनिया वालों को, कितने जन्मों से करते आ रहे, कभी सुखी हुए क्या? तो नहीं करो, भगवान की सेवा करो सीधी। परंतु शुरू वहां से करना है विक्रम की परिभाषा को। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस सब को समझने के लिए कृष्ण भावना भावित जो वरिष्ठ व्यक्ति है, ऐसे लिखा है, जो अधिकृत व्यक्ति है उनका संग करना चाहिए और इस रहस्य को समझना चाहिए। और ये भक्तों से समझना भगवान से समझने के समान है, क्योंकि वो भक्त वही बात करते हैं जो भगवान ने कही है। और तब आप कहें, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भक्त क्या है? डाकिया। आपके पास वही संदेश पहुंचाएगा जो भगवान ने आपके लिए भेजा है, वो उसके अंदर कोई तोड़मोड़ नहीं करेगा, इसलिए वो संदेश भगवान का संदेश और भक्त के संदेश में कोई अंतर नहीं। और प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि भक्त का संग करके नहीं सीखोगे तो कभी भी सफलता नहीं होगी, सदा ही भ्रमित रहोगे। अब आश्चर्य यह है कि इसके बाद विक्रम का वर्णन आएगा नहीं कहीं, अकर्म और कर्म का वर्णन है, विक्रम का वर्णन नहीं है। इसलिए चक्रवर्ती पाद उसका बीच में हमको याद दिलाएंगे। हम 18वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषो सयुक्तः कृष्ण कर्म कीर्त। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है, वो मान मान मनुष्यों में बुद्धिमान है। सयुक्त सयुक्त का अर्थ है वो मुझसे मिलने के लिए अथवा संसार से मुक्त होने के लिए। युक्त शब्द की परिभाषा क्या है? युक्त योग एक ही बात है, तो जो भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी है इसका अर्थ है सयुक्त, वो उसके योग्य है। कृत्सन कर्म कृत, कृत्सन का मतलब सारे के सारे, एक दो शब्द बार बार भगवद गीता में आएंगे, कृत्सन अकृत्सन, कृत्सन का मतलब पूरा, अकृत्सन का मतलब अधूरा। कृत्सन पूरा, कर्म कृत सारे कर्म करते हुए, सारे कर्म का मतलब कुछ भी करे भगवान के लिए काम करे, दुनिया के लिए वो अगर विक्रम भी दिखे तो भी वो विक्रम नहीं है। ये कहां, ये चक्रवर्ती पाद हमको समझाएंगे कि यहां लिखा नहीं है विक्रम, परंतु इस अध्याय के अंत में जहां आएगा अपीचे तस दुराचारो, तो दुराचारी है तो अकर्म किया होगा, विक्रम किया होगा ना, विक्रम भी किया है लेकिन भगवान की सेवा में है तो विक्रम नहीं है। और अच्छे से अच्छा कर्म करे और भगवान की सेवा नहीं है तो विक्रम है। तो वहां जाके इसको समझा आएगा, अभी आपको बताते हैं। तो सारे कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। मैं ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई ये ऐसा विशेष नहीं है, बहुत साल पहले मैंने सुना था, छोटा सा बच्चा है, उसको ये मालूम नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, भाई एक दो साल का बच्चा है, आपने गोद में ले लिया, आपकी चोटी को पकड़ रहा है, तो काम तो कर्म, कर्म तो कर रहा है ना, चोटी पकड़ रहा है, हाँ दाढ़ी पकड़ रहा है, लेकिन वो है अकर्मी, वो जानता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं वो कर्म करते हुए भी अकर्मी है कि नहीं। और उसकी माँ सामने खड़ी है, वो हंस रही है, वो कर्म नहीं कर रही है, फिर भी कर्म में बंधेगी क्योंकि वो हंस रही है उसके ऊपर, काम नहीं कर रही है परंतु उस कर्म में उसका बंधन हो जाएगा अगर वो उसके ऊपर हंसेगी तो। तो कर्म में भी अकर्म है और अकर्म में भी कर्म है, वो कुछ भी नहीं करते हुए भी बंधन में पड़ जाएगी। एक महात्मा ने किसी को कहा कि तुम भगवान का भजन करो, बोला क्या करने की जरूरत है, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं एक जगह बैठा हूँ, किसी को दुखाता नहीं हूँ, किसी को मैंने परेशान नहीं किया, बोला कहाँ बैठते हो, बोले इस पत्थर पे, बोला हटाओ पत्थर, हटाया पत्थर, नीचे बेचारे दो चार चींटियाँ मरी पड़ी थी, बोला इनको मारा ना, तुमने समझा तुम अकर्मी हो लेकिन तुम्हारे द्वारा इतना तो यह धर्म हो गया कि नहीं हो गया, तो कैसे बचोगे बताओ। तो ये कोई आदमी कर्म से बच नहीं सकता है, इसलिए एक 18 अध्याय श्लोक आएगा, हर कर्म में दोष होता है, जैसे आग में धुआं, तो काम छोड़ तो नहीं सकते ना। तो यहां ये सारी कला पूरी भगवद गीता में ये सिखाई जा रही है कि सारे कर्म करते हुए बंधन से कैसे मुक्त होना है। इसके लिए तीसरे अध्याय में एक शब्द आपने सुना होगा, कर्म ही कौशलम, कौशलम का शब्द सुना है, योग कर्मसु कौशलम, ये कुशल शब्द आपने कभी सुना है, कुशल शब्द कहां से निकला है, कुश घास जो पूजा के लिए काम आता है वो केवल साल में 15 दिन उसको निकालने का समय होता है, और जो विद्वान उस कुश घास को जड़ से निकाले और हाथ में न कटे, क्योंकि घास बहुत तीखा होता है, हाथ कटे ना जड़ बचे ना, वो है कुशल ब्राह्मण। तो काम तो करना है, उसका पीछे जड़ बचे नहीं कि दोबारा जन्म लेना पड़े भोगने के लिए, और काम करते हुए हाथ कटे नहीं का मतलब है इस संसार में भी उसका दुख सुख में चक्कर में न पड़े, इसको कहते कुशल। कुशल शब्द निकला वहां से, कुश घास को निकालने वाला ब्राह्मण है कुशल। तो काम में कुशल कौन है, जो कर्म करे अकर्मी बनकर, न तो उसके फल के भोगने के लिए दूसरा जन्म लेने के लिए बंधन में पड़े, न ही कर्म करते हुए दुख भोगे। बलदेव विद्याभूषण ने इसका भाव ये लिया है कि जो अच्छा, फिर भी एक बार 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 आप ये कर्म जब शब्द आ रहा है वो कर्म योग लेते हैं, क्योंकि गीता में मुख्य रूप से कर्म योग है और कर्म योग में भी गीता में सबसे ज्यादा बल दिया है निष्काम कर्म योग के। तो बलदेव विद्याभूषण इस कर्म को निष्काम कर्म योग लेते हैं और कहते हैं जो निष्काम कर्म योगी है ना, उसका उद्देश्य कर्म के पीछे है आत्मज्ञान, परंतु कर्म योग से हृदय की शुद्धि करेगा। तो कर्म योग उसका करेगा हृदय की शुद्धि और उसको ले जाएगा आत्मज्ञान में, क्योंकि उसका लक्ष्य आत्मज्ञान है, कर्म उसका लक्ष्य ही नहीं है, इसलिए उसको अकर्म है, उसका कर्म वो अकर्म है, क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरा है। चक्रवर्ती बात कहते हैं इस श्लोक में कर्म और अकर्म की व्याख्या है। अब क्या है ये उदाहरण देते हैं, शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध अंतःकरण वाला, उदाहरणार्थ महाराज जनक, वो कार्य का त्याग नहीं करता है, राजा बना हुआ है परंतु अंतःकरण शुद्ध है और सारे कार्यों में लगा हुआ है, निष्काम कर्म योग में लगा हुआ है, इसलिए वो कर्म नहीं है, अकर्म है। तो महाराज जनक वाला ये श्लोक क्या था, वो जद जद आचरति श्रेष्ठ वाले श्लोक के बाद है जनक आदि, हाँ तीसरे अध्याय में आया ना, उसका भाव क्या है, कम काम करना है दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए। तो उदाहरण कौन बन सकता है, कल ये विषय आया था याद है किसी को, जो अभी तक अपवित्र है वो पवित्र हो जाए और जो पवित्र है वो भी काम करें, क्यों, दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए। तो यहां क्या सिखाया जा रहा है कि कर्म वो अकर्मी वो है जिसका हृदय हो गया शुद्ध, हृदय हो गया अंतःकरण शुद्ध हो गया। किससे शुद्ध हो गया कोई पूछे तो बोला कर्तापन और भोक्तापन से शुद्ध हो गया, झूठा अहंकार नहीं है, मैं करता हूं मैं भोगता हूं ये नहीं है। तो फिर वो जो कर्म करेगा वो अकर्म है, क्योंकि वो किस लिए कर रहा है, उदाहरण अर्थ, जनक आदि उदाहरण अर्थ काम कर रहे थे, उनका अपना कोई उसमें उद्देश्य नहीं था, छोड़ना है कोई दिन में रात छोड़ के चले जाएंगे, हमारा तो है नहीं। सो चक्रवर्ती पाल आगे लिखते हैं, फिर कहते कोई सन्यासी जिसका हृदय पवित्र हुआ ही नहीं है, निष्काम कर्म योग किया ही नहीं है, और वो अगर कर्म को छोड़ेगा, कहेगा मैं अकर्मी हूं, फिर भी उसको कर्म का बंधन पड़ेगा। अकर्म में कर्म देखने का मतलब है हृदय शुद्ध हुआ नहीं और काम छोड़ दिया, तो फिर कहीं भिक्षा लेने जाएगा तो भी कहेगा इसने तो पनीर सब्जी दी नहीं है मेरे को, तो उसका जो विचार वहां होगा वो भोक्तापन का बना रहेगा, क्योंकि हृदय तो शुद्ध हुआ ही नहीं, तो उसके अकर्म में भी कर्म है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, डंडा ले लिया, सन्यासी हूं मैं, लेकिन फिर भी देखिए बहुत सारे चाय के लिए खड़े होते लाइन में, देखिए लाइनों में चाय के लिए खड़े होते लाल का गेड़ू कपड़ा वाले, कहते हैं अकर्म, ये डंडा भी हाथ में होता है, अभी लाइन में खड़े होते हैं तो है अकर्म ही, लेकिन कर्म सारा कर रहे हैं और बंधन पड़ेगा और दुख दुख दुख, दुख भोगेंगे, लिखा है ऐसे, ये लिखा है। और फिर चक्रवर्ती बात कहते हैं वो इतना पक्का है क्योंकि हृदय शुद्ध हो गया है ना, ऐसे कच्चे कोरे ज्ञानी उसको कहे तुम काम छोड़ो वो नहीं छोड़ेगा, वो उनकी सुनेगा ही नहीं। से बहुत से लोग हैं, जैसे आपको उदाहरण देना है तो किसका देंगे, चेतन महाप्रभु को कहा प्रकाश आनंद ने, गए सन्यासी हो ये क्या कीर्तन कर रहे हो, लेकिन बड़े बड़े उनके सुनो नहीं, ये कीर्तन ही हमारे लिए अच्छा है, चाहे हम पागल है तो हम पागल ही अच्छे, वो ऐसे कहेगा कि हम तो कृष्ण का काम करेंगे, यही हम पुस्तक वितरण करेंगे, यही प्रसाद वितरण करेंगे, तुम्हारे बैठ के ऐसे उपनिषद पढ़ने की हमें जरूरत नहीं, अकर्मी हम नहीं बनेंगे, हम कर्मी रहेंगे। वो सुनेगा नहीं ज्ञानी की। आपको कई 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 बार सुनाया होगा, हमने कुंभ मेले में एक विदेशी भक्त को किसी ने पकड़ लिया ऐसे ब्रह्म ज्ञानी ने, बोला आओ तेरे को ब्रह्म ज्ञान सिखाता हूँ। उसने बोला ब्रह्म ज्ञान में क्या मिलेगा? बोला आपको आत्मा परमात्मा दिखाई देगा। बोला वहाँ रसगुल्ला मिलेगा? बोला उसने कहा रसगुल्ला मिलेगा? बोला ब्रह्म में रसगुल्ला नहीं होता। बोला तेरा ब्रह्म तेरे पास, हमको रसगुल्ले वाला भगवान चाहिए। भाई कर्म करेगा तब रसगुल्ला बनेगा, बिना कर्म के तो रसगुल्ला नहीं बनेगा। तो हमें तो वहां भगवान वो चाहिए जिसकी सेवा होती। तो ये ब्रह्म वाला कितना भी भ्रम कराए, भ्रम में डाले, लेकिन भक्त भ्रम तो होता नहीं। ये चक्रवर्ती पाद ने भाव लिखा है। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो कृष्ण भावना में कार्य करता है वो सारे कर्म के बंधनों से मुक्त है। उनके सारे कार्य कृष्ण के लिए हैं, इसलिए न उसका सुख का फल न दुख का फल। जैसे कोई सामान्य कार्य करेंगे तो या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, लेकिन भगवान के लिए कार्य करेंगे तो न दुख है न सुख है। इसलिए वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, प्रभुपाद जी कहते हैं। सारे कार्य कृष्ण के लिए करता है, सारे कार्य कृष्ण के लिए करता है, विक्रम भी करता है। मैं आप करना मत, मैं उदाहरण दे रहा हूं। प्रभुपाद जी के शिष्य बड़े हरिदास, कभी वहां में जाते हैं आप देखा होगा, कभी बैठे होते हैं वहां, हरिदास उनका नाम है, उसको बड़ा हरि वैसे हरिदास ही नाम है। वो जेब कतरा था और जेल में था, और प्रभुपाद का फोटो देखा, घड़ी लगा हुआ। इसने वहां बाहर निकाल के ये विदेशी घड़ी चोरी करूंगा। वो बाहर निकला, पता लगा प्रभुपाद हैदराबाद में, हैदराबाद चला गया। प्रभुपाद के आगे गया, प्रभुपाद ने उसको देखा, बोला घड़ी चाहिए, दे दे दिए। प्रभुपाद ने उनको घड़ी दे दिया, वो भक्त बन गया। अब भक्त बन गया तो उस जमाने में मंदिर में इतनी ज्यादा आवक थी नहीं, भाई कुछ ना कुछ तो करके आओ। बोला तुम भी कुछ सेवा करो। बोला कोई नहीं आती सेवा, एक सेवा आती। बोला क्या? बोला जेब काटना। बोला कुछ भी करो, भोग तो भगवान को लगना है, चावल आना है। बोला ठीक है मैं जाता हूँ। वो लोकल ट्रेन में जाके एक जेब काट के जो आता, ये लो मेरी कमाई। वो स्वयं बताता है, बैठे हैं तो जीवित है वहां। अब ये काम तो अच्छा नहीं है। अब जैसे आप इसको ऐसे सोचो तो सनातन गोस्वामी पाद रिश्वत दे रहे हैं जेलर को, रिश्वत देना कोई अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन काय के लिए दे रहे हैं? चेतना महाप्रभु से मिलने के लिए। तो वो रिश्वत विक्रम नहीं रह गई। विक्रम है क्या? कोई कहा क्या खराब कहा उसको? नहीं ना। हरिदास काम कर रहा था, प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे थे, ये सब्जियां काट रहा था। ये कपिला मैं देख के आऊं, जो इंचार्ज था वो देख के गया, वहां चला गया। प्रभुपाद का इधर उतरे को दीक्षा देता हूं, और वो उधर बैठ गया, वो सब्जी काटने वाला ढूंढ रहा है कहां चला गया। प्रभुपाद ने कहा तुम पासपोर्ट मारो। बोला पिता के नाम का पता ही नहीं है। बोला मेरा लिख लो। प्रभुपाद ने बोला उसके पासपोर्ट पे पिता का नाम प्रभुपाद लिखा हुआ है। लेकिन उसने फिर इतना काम किया, ये रोज जो दर्शन देखते हैं वो उसकी वजह से, ITV उसकी वजह से, स्कान TV, उसने कई उसने कार्य किए। लेकिन शुरुआत में उसने बोला, अब विक्रम की बात कर रहा हूं कि भगवान की सेवा में सब कुछ लगा सकते हैं, ये आश्चर्य है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? श्रीरंगम। और वो बनाया किसने? एक डाकू ने, और कई साल डाके लगा। पर लोग पैसे देते ही नहीं है, क्या करूं मांगने से। डाके डाले, मंत्रों से सारा मंदिर बनाया। उसको तो बड़े अलावर के नाम से वहां उनकी वहां समाधि बनी हुई है, प्रणाम करने लोग जाते हैं श्रीरंगम में। ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूं, ये पब्लिक के लिए नहीं। एक और प्रभुपाद भगवान के लिए सेवा में हो, वो हरिदास स्वयं हरिदास अपने आप, ये तो आप खुद ने अपनी कथा बताई। तो बताए और उस वक्त में एक माता जी और प्रभुपाद जी की शिष्य थी, उससे पहले वो उसको नृत्य गाना ऐसे कुछ करना आता था, तो उसको कहा तुम भी कुछ लेके आओ, फिर सबको कहते जाओ कुछ ना कुछ लेके आओ। बोला मुझे कुछ आता नहीं है, करूँ क्या। बोला वो फिर जाके लोगों को जो उसको सबको हंसा के मुस्कुरा के कैसे पैसे लाना थे लाने थे ला के। तो जब तक ये समझ में नहीं आए कि काम भगवान के लिए कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि सबका मालिक तो सब चीजों का स्वामी तो भगवान है, उसी की सेवा में ले जा रहे तो हमें कौन सी आपत्ति। तो ये इसका भाव जो जो आंतरिक भाव है ये है। प्रभुपाद जी के लिखने का अर्थ ये है सब प्रकार के कार्यों में लिखा, सब प्रकार का कार्य लिखा है ना प्रभुपाद ने, ये थोड़ी लिखा है कि पूजा के कार्य में लगा है। क्या लिखा है देखो, हाँ सब प्रकार के कार्य में, सब प्रकार के कार्य में लगा हुआ है। अकर्म का अर्थ क्या है, जिस कर्म के फल को भोगना न पड़े। कर्म शब्द की परिभाषा आपको आठवें अध्याय में पढ़नी पड़ेगी, वहां अर्जुन पूछेगा किम कर्म, कर्म किसको कहते हैं, और उसका उत्तर है जो हमारे दूसरे शरीर को बनाने का कारण है वही कर्म है। भूत भाव उद्भव कर कर्म संज्ञित, दोबारा शरीर लेने के लिए जो हमको बाध्य करे वो कर्म है। कर्म करोगे तो शरीर लेना पड़ेगा, क्योंकि फल भोगना पड़ेगा उसका, अच्छा हो तो स्वर्ग में जाओ या बुरा हो तो नरक में जाओ, कुछ भी लेकिन फल तो भोगना ही पड़ेगा ना कर्म का। तो यहां ये अकर्म हो गया। अब कृष्ण के लिए कार्य, अब प्रभुपाद जी कहते हैं निर्विशेषवादी सारे फल इच्छा के कार्यों का त्याग करते हैं भय से। कौन सा भय, कि इनका फल भोगना पड़ेगा। हमारे आत्म साक्षात्कार मार्ग में ये बड़ी रुकावट है, परंतु भगवान के भक्त भगवान के सेवक है और सब काम भगवान की सेवा में करते, दोनों में अंतर लिखा है। एक जगह कुछ तो ऐसे निर्विशेषवादी मायावादी संत रहते थे और कुछ हमारे भक्त ये संकीर्तन वाली बस वाले भी उसी गांव के बाहर रह रहे थे, दोनों जाते थे भिक्षा लेने के लिए। तो भक्त तो जो लाते थे उसका तो हलवा बनाए, पूरी बनाए, पनीर सब्जी बनाए, पकोड़े बनाए, तो गाँव वाले कहे ये तो भक्त कैसे हैं, ये तो बड़ा माल मसाला खा रहे हैं, और ये जो ज्ञानी बेचारा है ये तो सूखी रोटी खा रहे हैं। गाँव में लगी आग, गाँव में जब आग लगी तो वो जो लोटा लंगोटा वाले सन्यासी तो बोले चलो ये जल जल रहे तो गाय को, हम दूसरे में जाते थे, और जो खाते थे पनीर वो पाली लेके गए गाय का आग बुझाने के लिए। बोला जिनकी खा रहे हैं उसकी सेवा तो करनी चाहिए ना, भगवान के भोग के लिए दे। तो गांव वाले ने कहा ये अच्छे हैं, भले पनीर खाएं लेकिन अच्छे ये है। ये हित का काम तो करते हैं ना, भला तो करते हैं ना सबका, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं और किसी को देंगे नहीं, बस भले दुख में दूसरा है मरे तो मरे, ऐसा नहीं करेंगे ना। उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि भक्तों के कार्यों की हम प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं कि वो कार्य छोड़ते हैं कि बंधन न पड़े, और भक्त सारे कार्य करते हैं फिर भी बंधन नहीं पड़ता है, तो कार्य छोड़ना नहीं चाहिए, सिद्धांत ये है। फिर भी प्रभुपाद जी इसलिए सारे कार्य कृष्ण भावना में करने चाहिए। तो उसमें हमको क्या सुख मिलेगा, सब कार्य कृष्ण को करेंगे तो हमारे को क्या सुख मिलेगा। प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, कार्य में ही दिव्य से दिव्य सुख मिलेगा, कार्य का फल बाद में मिलेगा, कार्य में ही दिव्य से दिव्य सुख मिलेगा। वो जो कार्य है ना जब करेंगे उसी में दिव्य सुख मिलेगा। क्या लिखा है पढ़िए इसको ठीक तरह, एक लाइन पढ़िए। तो आप सब काम कर रहे हैं आपको दिव्य सुख प्राप्त होता है, आपको दिव्य सुख प्राप्त हो रहा है, आप सब काम कर रहे हैं, भाई पुजारी ये बहुत अच्छा भगवान के लिए भोग बना के अर्पण कर रहा है तो दिव्य सुख मिलता है उस कार्य में। दर्श बहुत अच्छा भगवान का श्रृंगार करके फिर भगवान को आईना दिखाते हैं बाहर, पुजारी आके फिर देखते हैं खुद मुस्कुराते हैं, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है भगवान, तो हम उसके कार्य में स्वयं प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते, कार्य आपने किया उससे प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं। आज इतने पुस्तक वितरण हुए सुबह, कार्य में अपने आप प्रसन्नता होती है कि नहीं, आज आज मेरे 50 गीता वितरण हो गई तो अपने आप प्रसन्नता होती है कि नहीं, क्योंकि भगवान का कार्य है, भगवान है ही आनंदमय, उसका कार्य करोगे तो आनंद ही मिलेगा, और दुनिया है ही दुखमय, उसका कार्य कुछ भी करो, करोड़ रुपये कराओ कमाओ तब भी चार बाल सर के गिरेंगे, गंजे होगा, ये सच है कि झूठ है? भगवान की सेवा के अंदर ही सुख है, उसके अलावा और सुख किया, उसके अतिरिक्त सुख की कोई आवश्यकता नहीं, सेवा में ही सुख है। और उसके लिए प्रभुपाद सावधान क्या कर रहे हैं, सेवा में सुख तब है जब स्वार्थ नहीं है, सेवा में सुख तब है जब स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ क्या, न नाम की इच्छा है, मेरा नाम हो इसलिए काम करता हूं, वो इच्छा नहीं है। स्वार्थ नहीं है का मतलब पद प्रतिष्ठा मान इसकी इच्छा नहीं है, सेवा है, सेवा है। और अंतिम लाइन पर ये बहुत अच्छी है, ये वैक्सीनेशन लिखा है प्रभुपाद ने, क्या लिखा है वैक्सीनेशन के लिए, समझ रहे हैं ना, आजकल टीके लग रहे हैं ना, क्या वैक्सीनेशन लिखा है, क्या लिखा है, इम्यूनाइजेशन लिखा है, क्या लिखा है हिंदी में, क्या लिखा है, सो कृष्ण का दास्य भाव हमारे लिए वैक्सीनेशन है भाई। भगवान का सेवक है किसको, कौन भगवान का सेवक को कौन क्या हाथ लगाएगा, भगवान का सेवक है तो बेफिक्र फिरे, हनुमान की तरह कहीं भी जाए, रावण की लंका में जाके भूत के आए कौन रोकेगा भगवान का सेवक है कौन रोकेगा उसको, नहीं भाई आग लगा के आए और क्या करेगा, आग लगा दी रावण की सोनी लंका में, आग लगा दी, भगवान के सेवक का कौन क्या कोई बिगाड़ेगा तो वो इम्यून है। अब पढ़ रहे हैं 19वां श्लोक, अब यहां से ये पांच श्लोक जो आएंगे इसमें ये पहले ये श्लोक 19, 20, 21, 22, 23 हाँ 24 तक है, ये जो ज्ञान आरुरुक्ष हो ये शब्द आएंगे अभी। यस्य सर्व यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानग्नि दग्ध कर्माणं तमाहो पंडितं बुद्धः। यस्य यस्य का मतलब जो भी व्यक्ति, यस्य कार्य करना है तो सर्वे समारंभ, कोई भी कार्य है उसका जब आरंभ करता है काम के आरंभ से ही, काम संकल्प वर्जित, काम संकल्प का मतलब उस कार्य के फल को भोगों का ये विचार ही निकाल दिया, कार्य शुरू करने से पहले ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, भगवान के लिए, मानो जिसने ये मान लिया ज्ञान उसके, इसको जो ये ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है कि मैं भगवान का सेवक हूं, ये काम भगवान का है, ये जो ज्ञान है ये है अग्नि, ये काम क्या करेगी, वो जो कर्म के सारे फल है उनको भस्म कर देगी, ये ज्ञान की अग्नि कर्म के फलों को भस्म करेगी। और जो बुद्धिमान है वो ऐसे कार्य करते हैं और पंडित उनको कहते हैं ये ठीक है। अब इसका अनुवाद पढ़िए, अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये पांच श्लोक, यहां से पांच श्लोक जो हैं वो है ज्ञान के स्तर पे काम करना, जो इस विभाग का नाम है, वो सारे कार्य सो आरंभ आरंभ, सम का मतलब सम्यक, सम्यक का मतलब पूर्ण, सारी शुरुआत जो करता है आरंभ करता है उसमें कोई फल की इच्छा नहीं, क्यों करता है? बोला आत्म साक्षात्कार के लिए करता है। बुद्धिमान उसको कहते हैं कि ये बड़ा पंडित है। बोला जब अंतःकरण पवित्र हो गया निष्काम कर्म से, तो फिर उसके कर्मों के बंधन सारे ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाएंगे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं वही बात, पांच ये श्लोक अब जो है इनमें इस ज्ञान के स्तर पर कर्म कैसे करें यह समझाया गया है। अब यहां ये बात लिखते हैं कि ज्ञान की अग्नि किसको जलाएगी, तो बोला कर्म और विक्रम दोनों को जलाएगी। किसको जलाएगी? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कर्म और विक्रम दोनों को जलाएगी, क्योंकि अभी आपको बताया ना बड़े विक्रम किए भक्तों ने फिर भी जल गए ना, तो कर्म और विक्रम दोनों को जलाएगी। बोला ये कैसे कह रहे हैं? तो विक्रम को कैसे समझना चाहिए? बोला विक्रम की और कोई परिभाषा ही नहीं हुई है। भगवान ने कहा विक्रम को समझाऊंगा, समझाया नहीं है तो कहां है विक्रम। तब लिखते हैं ये कर्म को अकर्म में देखना है, विक्रम को यह नहीं कहा गया है। जो सत्रहवें श्लोक में भगवान ने कहा विक्रम बताऊं तो वो नहीं बताया। बोला विक्रम कहां बताएंगे भगवान? बोला आगे बताएंगे। कौन से श्लोक में बताएंगे? 4:36 और 37 में बताएंगे। तो विक्रम की परिभाषा कहां है? 4:36 और 37 वो क्या है? अपिचेत पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्वे नयम अवृजनम संतरिष्यसि यथेधांसी अवसमिधो अग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन तथा ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ये श्लोक जो है विक्रम भस्म हो जाता है। ये विक्रम होगा ना, पाप तो विक्रम है ना, तो ये विक्रम की परिभाषा इसमें आ गई। इसलिए हम बोलते हैं भगवान की सेवा में कर्म विक्रम दोनों भस्म हो जाएंगे। इसलिए जो उदाहरण आपको दिए रंगनाथ मंदिर के बनाने वाले का विक्रम भी जल गया और भक्तों ने कुछ भी किया वो भी अपने आप भगवान की सेवा में जल गया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं किया ना। एक वैश्या थी, सोने का हार लाई 9 लखा भगवान को पहनाने के लिए। बेचारा पुजारी कच्चा खड़ा था, उसको वैश्या को दिया, पहले तो अपनी आंख बंद कर ले जा ले जा। भगवान ने पीछे थप्पड़ मारी पुजारी, बोला तेरे को दे रही है मेरे को दे रही है? तो उसने मुड़ के देखा, बोला आपको? बोला मेरे को पहनाओ, मैं थोड़ी पवित्र होऊंगा, उसका उद्धार होगा, तू पहनेगा तो नरक में जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? वैसा का भी भगवान को क्या फर्क, कोई अंतर पड़ेगा क्या? तो उसका ही भला होगा ना, लेकिन हम अगर उसको भोग करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। तो उसकी वो भी सेवा में लग जाएगा। तो ये यहां दो श्लोकों को देकर इस बात को चक्रवर्ती पाद विक्रम भी भस्म हो जाए, कर्म भी विक्रम भी भस्म हो जाए। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य है जो पूर्ण ज्ञान में वही कृष्ण भावना भावित भक्तों के काम को समझ सकता है, जो ज्ञान में नहीं है वो नहीं समझ सकेगा, पूर्ण ज्ञान नहीं है वो नहीं समझ सकेगा। क्योंकि कृष्ण भावना के कार्य करने वालों को कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं है। इसका अर्थ है कि उन्होंने सारे कर्मों के फल को जला दिया है। किससे? अपने स्वरूप के ज्ञान से। प्रभुपाद ने स्वरूप ज्ञान लिखा है, देखो लिखा है स्वरूप ज्ञान, मैं भगवान का दास हूं ये ज्ञान से। हाँ देखो ये है अंतर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में और अन्य लोगों के तात्पर्य। दूसरे लोग लिखे ज्ञान कौन सा? आत्मा का ज्ञान। बोला आत्मा का ज्ञान क्या? आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। अरे आत्मज्ञान क्या? आत्मज्ञान ये कि आत्मा भगवान का दास है, ये कोई नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि सब खास बनना चाहते, कोई दास नहीं बनना चाहता, और जो खास बनता है उसके ऊपर कोई घास भी नहीं डालता। नहीं सत्य है ना? प्रभुपाद कौन सी अग्नि जलाती है यह याद रखना, कौन सी अग्नि जलाती है? कृष्ण भावना भावित भक्त के सारे कर्मों के फलों को कौन सी अग्नि जलाती है? आत्मा के स्वरूप के ज्ञान की अग्नि, कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। और कौन से भक्त के कर्मों को जलाती है? जिसकी इंद्रिय तृप्ति की भावना लेस मात्र भी नहीं है, तिल मात्र भी नहीं है। इसमें आग की तुलना किससे दी गई है? स्वरूपगत, आत्मा के स्वरूपगत ज्ञान को आग से तुलना दी गई है। बीसवां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्चर्य कर्मणे अभिप्रवृतोपि नैव किंचित करोति स। त्यक्त्वा कर्म फल संगम, कर्म के फल से में कोई आसक्ति नहीं है। संग का मतलब आसक्ति, कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं है। नित्य तृप्त है, वो अपने आप में पहले ही तृप्त है, तो उसको क्या चाहिए? क्या कुछ भी नहीं चाहिए। निराश्रय का मतलब, निराशी का क्या अर्थ लिखा है? नित्य तृप्त, निराशी, किसी कोई और देगा तब काम चलेगा, उसको किसी के ऊपर आशा नहीं है, स्वतंत्र। भगवान की सेवा में है तो किसी और की सेवा क्यों करेगा? किसी और के ये देगा तब मेरा काम चलेगा, ये उसको विश्वास है, इसके ऊपर उसको कोई लेना देना नहीं, भगवान देगा। एक व्यक्ति रात को 3 बजे मंदिर में बैठा था, रो रहा था, पता नहीं, एक आदमी को नींद नहीं आ रही थी, बड़े सेठ को। वो निकला तो मंदिर का दरवाजा खुला, देखा अंदर गया, एक आदमी रो रहा है। बोला क्या है? बोला कल सुबह मेरे बेटे की ऑपरेशन है, बहुत पैसे की जरूरत है, पैसा है नहीं, भगवान के पास बैठा हूं, जो करेगा भगवान करेगा। उसने चेक लिख के बोला जितना बिल आए मेरे पास दे देना, मैं दे दूंगा, ये मेरा कार्ड रखो। बोला जरूरत नहीं है कार्ड की, और जरूरत? बोला कार्ड क्यों नहीं है? बोला एक कार्ड रखा है भगवान का, जिसमें रात को 3 बजे आपको उठा के यहां भेज दिया, अब और कार्ड रख के मैं मुश्किल में नहीं डालना चाहता भगवान को, कितने कार्ड इकट्ठा करूं, एक भगवान का कार्ड है बस, उनसे काम हो गया। ये जिसका विश्वास है कि सब काम कृष्ण कर लेगा, कौन सा श्लोक चैतन्य चैतन्य था? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण। ये जिसको विश्वास है ना, उसको कहीं चिंता नहीं। ये निराशी की परिभाषा ये है। और कोई देगा तब मेरा काम चलेगा? नहीं। और कर्मणे अभिप्रवर्तो, सब कामों में के लिए उत्सुक है, भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करना है, बाण मारना है, यस। अर्जुन क्या कर रहा है? मार रहा है, उसके लिए भी तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, भगवान के लिए कुछ भी, भगवान के लिए करने के लिए तैयार है। नैव किंचित कर होती है, समझो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि उसको कोई फल, उसको कोई बंधन पड़ेगा ही नहीं, वह कर्म ही है। तो बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, वो जो कहा गया पहले उस बात को आगे समझाया गया है, फल के, कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं है, वो अपने आत्मा के स्वरूप के ज्ञान में ही संतुष्ट है। वो नित्य, क्या नित्य तृप्त किस बात में है? जो नित्य तृप्त कोई है तो किस बात में नित्य तृप्त है? अभी आपका पुस्तक पढ़ा नहीं, अब चल शुरू करेंगे, अभी बलदेव विद्याभूषण की बात कर रहे हैं। नित्य तृप्त क्यों है? क्योंकि अपने स्वरूप का पता लग गया, मैं भगवान का सेवक हूं, ये कोई छोटी बात है क्या भाई? दो त्रिलोकी नाथ वो मेरा स्वामी है बस, और क्या चाहिए? और ये पता लग गया, बस संतुष्ट, कोई चिंता नहीं। लिखा है बलदेव इसने, वो अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी चिंतित नहीं है, क्या खाऊंगा कहां से आएगा इसके लिए चिंतित नहीं है, जो पड़ा है उसको कौन रक्षा करेगा उसके लिए भी चिंतित नहीं है, क्योंकि भगवान के ऊपर कैसे। और इस स्थिति को कहते हैं आरुरुक्ष। ये श्लोक है आरुरुक्ष का। इसका मतलब वो ज्ञान के स्तर पे कर्म को समझने की शुरुआत कर चुका है, समझ लो। वो अब इस रास्ते पे रवाना हो चुका है और उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, वो नित्य तृप्त, वो अपने आनंद में मगन है। अपने आजीविका के लिए भी किसी का सहारा नहीं लेता है। यहां लिखा है, आगे लिखा है, न कुछ कमी है उसके लिए परेशान है, और जो कुछ है उसको बचाने के लिए परेशान नहीं। तो उसके लिए कौन सा श्लोक उसको पक्का पहले याद हो गया भगवद गीता का? अनन्यास चिंतनंतो माम ये जना परुपासते तेषाम नित्यवियुक्तानाम योग क्षेमम वाम्यम। भगवान अपने आप पहुंचा देगा उसको, ये विश्वास है। इसलिए आप खुद अपने लिए कुछ भी नहीं करता है, बस भगवान की सेवा में लगा है सुबह से शाम तक, कोई चिंता नहीं है उसको। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्त होने का एक ही साधन है कृष्ण भावना में कार्य करना। ये प्रभुपाद जी की पहली लाइन है। और वो जो कार्य करते हैं, कार्य करता है जो भक्त, केवल शुद्ध प्रेम के स्तर के ऊपर, भगवत प्रेम के भाव से करता है, इसलिए उसको कोई फल की इच्छा नहीं। दुनिया में उदाहरण देना हो, देखो माँ बच्चे के लिए कितनी सेवा करती है। छोटा बच्चा है, साफ करती है, खाना खिलाती है, कपड़े धोती है, बस बच्चा मुस्कुराता है उसी में खुश है, काम से थकती नहीं है। माँ को कभी बच्चे के लिए थकती देखा है? नहीं। भगवान तो आपने कहते माता हम जगत है, भगवान कहते मैं माता हूं। तो ऐसे जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो काम में थकावट नहीं होती, फिर काम में कभी थकते नहीं है और काम में ही सुख मिलता है। तो प्रभुपाद यहां क्या लिख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम के स्तर के ऊपर कार्य कर रहा है, इसलिए उसको फल में कोई इच्छा नहीं है। प्रभुपाद के लिए इतना काम करते थे प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद केवल मुस्कुरा के उनकी ओर देखता था, वो समझते हैं हमारा जीवन सफल हो गया, बस यही उनके लिए फल था, कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद कहेंगे आज इतने पुस्तक वितरण हुए कृष्ण की कृपा से, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, सब कुछ हो, कितना काम किया है भक्तों ने, आश्चर्य लगता है। हम तो यहाँ बड़े सुख सुविधा से रह रहे हैं, कम से कम आज से 20-25 साल पहले मैं आया था, ये पूरी ब्रह्मचारी ऊपर रहते थे, एक भुवनेश्वर के कमरे में कूलर था बस, छत के ऊपर जाके रात को पानी गिरा के सोते थे, पंखे के ऊपर सो नहीं सकते थे सेकंड फ्लोर पे, तो आग जो उबलती थी, बहुत ऐसा ऐसा सख्त वातावरण था। किस बात के ऊपर पता नहीं मेरे को याद आया, हाँ ये मंदिर जिन्होंने बनाया, तब फोगला आश्रम से आगे तो कोई आता ही नहीं था, एक यहाँ खतरनाक बैल रहता था, उसका नाम है साधु मार बैल, साधु को देखा नहीं मारा नहीं, बैल का नाम साधु मार बैल था। बेचारे विदेशी कैसे आके यहाँ रहे, गुरुदास और जमुना कैसी स्थिति में रहे होंगे। प्रभुपाद जी आए एक दिन दिल्ली से रात को 9 बजे, बोला भूख लगी है, अब कोई गैस तो था नहीं, एक तो अंगारे से चूल्हा जलाना था कोयले वाला, अंदर देखा एक टमाटर पड़ा है, एक आटा है और कुछ भी नहीं, और कहीं से कुछ मिलेगा भी नहीं। उसने टमाटर का सूप बनाया और आटे का पराठा बनाया, प्रभुपाद को खिलाया। अब ये स्थिति थी मंदिर के, कच्ची ईंटें थी, कुछ था नहीं, वो कैसे रहे होंगे लोग, लेकिन उसी में खुश थे। प्रभुपाद आए, देखा ये मंदिर बनना है, बहुत अच्छा है, उस काम में उनको सुख मिलता था। तो भगवान के काम में सुख मिलता है इसकी अनुभूति हमको हो जाए तो फिर और कोई काम करेंगे ही नहीं। प्रभुपाद जी आगे क्या लिख रहे हैं, अपने निर्वाह के लिए भगवान के ऊपर छोड़ देता है। ये वही योग क्षेमम महावान वाला प्रभुपाद जी ने लिखा है, देखा आपने, ये सब कृष्ण के ऊपर छोड़ देता है। अपने में जो योग्यता है भगवान की सेवा में लगता है, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देता है। इसको कोई अच्छे बुरे कर्म के फल का कोई चिंता नहीं है। ये अकर्मी की पहचान है, ये अकर्मी का चिन्ह है। अब फिर पुनः प्रभुपाद ये विक्रम की परिभाषा वही लिख रहे हैं, देखो याद करो क्या लिखा है। पहले क्या था विक्रम, क्या है? कृष्ण भावना के विपरीत कार्य। और यहां दोबारा पुनः लिखा है प्रभुपाद ने, दो बार ये बात आई है। अब 21वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, समय तो आपका हो रहा है, चलो है अभी 8-10 मिनट है। निराशिर यतितात्मा त्यक्त्व सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन अपि नव कुर्वन क्या है कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम। त्यक्त्व सर्व परिग्रह का मतलब परिग्रह कहते कठा करने को, कठा करने का विचार ही छोड़ दिया है। कुछ कठा करूंगा उसकी आवश्यकता, संग्रह करना नहीं है। या क्या परिग्रह का मतलब संग्रह, संग्रह नहीं करता है उसने। संग्रह करना किसका संग्रह? दूसरों से कुछ मिलेगा कठा करूंगा, वो विचार छोड़ दिया है, भगवान देगा उसी से मैं रहूंगा। और फिर लिखा है निराशीर, कोई इच्छा नहीं है कृष्ण भगवत सेवा के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं। बोला उसका मन विचलित नहीं है ना, यत चितात्मा, मन भी और इंद्रियां भी वश में है, इंद्रियां और मन वश में है और सारे कार्य करता है, कुर्वन कर्म काम करता है, काय के लिए ना कार्य करता है, काय के लिए शरीर के निर्वाह के लिए, शरीरम केवलम, फिर उसको पाप नहीं लगेगा। अब जो 3 श्लोक ये हैं यहां से लेके 21, 22, 23, इसमें है योग आरूढ़। योग तो शब्द नहीं, आरूढ़ का मतलब जो ज्ञान में पक्का हो गया, पहुंच गया मंजिल पे, पहुंच गया। कौन मंजिल पे पहुंच गया? ज्ञान में स्थिर हो गया, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान अपने आप पालन करेगा। प्रभुपाद ने मेरे समझ में इसके 2 उदाहरण दिए, एक तो पशु जो मालिक को बेचते हैं, इसके अंदर मेरे ख्याल पशु का उदाहरण होगा, और एक मशीन के अंदर जो एक पुर्जा, पुर्जा समझते हैं पुर्जा शब्द, कल पुर्जा जो होती है ना, उसको तेल क्यों लगाते हैं? ताकि मशीन पूरी काम करे। ये 2 उदाहरण प्रभुपाद ने यहां दिए हैं। भाई शरीर के लिए काम क्यों करता है? बोला जैसे पुर्जे में तेल लगाना जरूरी है, नहीं तो मशीन नहीं चलेगी। ये पशु के ये 2 उदाहरण दिए हैं यहां, ठीक है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं उसका मन और बुद्धि वश में है, प्रभुपाद लिखते हैं मन और बुद्धि वश में है, क्योंकि वो समझता है मैं भगवान का अंश हूं, भगवान मेरे द्वारा ये कार्य करा रहा है, वो सब अपना कार्य भगवान को ही अर्पण करता है। फिर प्रभुपाद ने उदाहरण दिया जैसे कल पुर्जा मशीन में काम करता है, उसको कभी तेल की सफाई की जरूरत होती है, इसके लिए उसको भी स्नान करना है, रोटी खानी है, लेकिन काय के लिए? भगवान की सेवा के लिए, वो मशीन का पुर्जा बन जाता है। और दूसरा उदाहरण क्या है? पशु जिसको बेच दिया है, उसका स्वामी अगर कोई कठोर है, मारता भी है, तो पशु कुछ नहीं करता, ऐसे उसने भगवान का अपने आप को दास बना लिया है। अब भगवान चाहे तब वो भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन पढ़ लो, 1 मिनट में। मन शुद्धे हो गे हो जो कुछ मोर तुहे अर्पि लो नंद किशोर मारे भी राखो। ये श्लोक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है शरणागति का, सर्वधर्मान परित्यज का उदाहरण ये दिया है, ये भजन उसका उदाहरण है। तो ये भक्त कैसा है? सब कुछ भगवान आपका, हमारा कुछ नहीं। मारो रखो आपकी इच्छा, भाई पशु को मारो रखो आपकी इच्छा, हमने तो आपके हवाले कर दिया, आप जैसे चाहो वैसे करो। तो प्रभुपाद ने ये उदाहरण दे दिया, दो उदाहरण हो गए ना। वो भक्तों को इतना काम होता है कि उसको बेकार बातों के लिए समय ही नहीं होता है, और अपने शरीर के लिए कोई भी गलत अवैध कार्य नहीं करता है धन इकट्ठा करने का। प्रभुपाद ने कहा धन अवैध रूप से धन इकट्ठा नहीं करता है। बाईसवां श्लोक, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वा अतीतो विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो भगवान अपनी इच्छा से आए उसमें संतुष्ट, कभी भुने हुए चने मिले तो खा के सो जाता है, और कभी पनीर और पराठा मिले तो भी खुश, दोनों में खुश, जो भी आए उसमें खुश। आ गया है भगवान ने भेजा है, खा लो बस हो गया, नहीं भेजा तो व्रत करो। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, उदाहरण देना हो तो श्रीवास ठाकुर का देना। जितने महापुरुष पूछे थे, गृहस्थी हो काम नहीं करते हो परिवार कैसे चलेगा, देगा ऊपर वाला? बोले नहीं भेजेगा, बोले व्रत करेगा। अच्छा है व्रत करने में लाभ ही है। बोले कल नहीं भेजा तो? बोले गंगा में जाऊंगा पानी पी लूंगा। तीसरा दिन नहीं भेजा तो? बोले डूब के मरूंगा और क्या। नहीं देगा अगर उसने हाथ निकाला और किसके पास जाऊं? तब चैतन्य महाप्रभु क्या कहा, लक्ष्मी भीख मांग सकती है लेकिन श्रीवास तुम्हारे पास कमी नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर विश्वास हो तो भक्तों को कोई परवाह नहीं, कुछ चिंता नहीं होनी चाहिए, ये इस बात के ऊपर विश्वास होना चाहिए। नहीं ये इसका यदृच्छा लाभ का यही अर्थ है। द्वंद्व अतीतो विमत्सरः, द्वंद्व अतीतो का मतलब गर्मी आज काम नहीं करूंगा, नहीं अभी ऐसे पुजारी कभी गर्मी में अपना काम बंद किया, आरती बंद हुई, सर्दी में कहीं हुई नहीं हुई ना, बरसात में हुई नहीं हुई। द्वंद्व का मतलब गर्मी हो सर्दी हो सुख हो दुख हो लेकिन भगवान की सेवा तो चलेगी। विमत्सरः का मतलब किसी में दोष नहीं देखता, किसी में ईर्ष्या नहीं करता है। विमत्सर का अर्थ तो यही है ना, मत्सर रहित। मत्सर क्या है, किसी में किसी से दोष नहीं, किसी में दोष दृष्टि नहीं रखता है। समझ सिद्ध हो असिद्ध हो, चाहे सफलता मिले या असफलता मिले कोई बात नहीं, गए थे नई पुस्तक लिए कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया। अब असफलता का उदाहरण देना हो तो जटायु का देना, रावण से लड़ पड़ा मर गया कोई बात नहीं लेकिन भगवान की सेवा की थी, सब असफल हुआ लेकिन भगवान ने तो उसको गोद में बिठाया, उसको तो भगवान का भक्त तो हो गया ना, सफल तो नहीं हुआ असिद्धि हुई लेकिन कौन सा हानि कौन सी हुई। जटायु ने भगवान की सेवा की, रावण से लड़ा और क्या करेगा, अपने जितना बल था वो लगा दिया भगवान की सेवा में, फिर सफल हो ना सफल हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम गए थे हमने सेवा करने के लिए गए थे, मिल गया तो भगवान का, नहीं मिला तो भगवान की इच्छा, हमने अपना प्रयास पूरा किया। कृत्वापि न बध्यते, सब काम करते हुए बंधन में नहीं पड़ता। बलदेव विद्याभूषण पाद कहते हैं शरीर के लिए कपड़े और रोटी की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए भक्त को। ये बलदेव विद्याभूषण की पहली लाइन है, कपड़े और रोटी के लिए अधिक चिंतन नहीं करना चाहिए। भागवत में क्या लिखा है, क्या रास्ते के ऊपर पुराने कपड़े लोग नहीं फेंकते हैं, क्या अपना हाथ नहीं है सर के ऊपर तकिया रखने के लिए, क्या पेड़ों ने अभी छाया देना और फल देना बंद कर दिया है कि किसी के पास जाके हाथ टांगेंगे। भगवान ने काम कम कर दिया, ये भागवत में लिखा है, पढ़ा है सेकंड दूसरे स्कंद में है ना। अब ये भी तो आखिर भागवत में लिखा है तो कोई तो उद्देश्य होगा ना। तो न कपड़ा और न भोजन को इकट्ठा करने की इच्छा है, जो भगवान की इच्छा से मिल गया उसमें संतुष्ट है। गर्मी हो सर्दी हो अपनी सेवा चालू है, किसी द्वेष नहीं करता है, कोई कुछ बुरा भी कहे तो उसको बुरा नहीं मानता है, सबके साथ समान है। ऐसे व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद इसी बात को लिखते हैं कि अपने शरीर के लिए भी ज्यादा प्रयास नहीं करता है, जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है, अपने आप आ गया। इसके लिए साधु के लिए एक भाषा, एक शब्द होता है आकाशी, आकाश वृत्ति से रहता है, जो आ गया, नहीं आया नहीं आया। आकाश वृत्ति कहते हैं, हम कहते हैं हवाई रोजी कहते हैं। प्रभुपाद ने एक बार कहा, देखो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेवा के लिए भगवान की डॉलर हवा में उड़ते हैं। भक्त एक ने पक्की बात कर ली कि भगवान में डॉलर उड़ते हैं। और किराया देना था, पैसा था नहीं मंदिर का, किराए का मंदिर था, बाहर गया तो डॉलर उड़ते आ रहे थे और इकट्ठा करके ले आया और जितना देना था उससे ज्यादा थे, पता नहीं कहां से आ रहे थे, उड़ते आ रहे थे। सचपच उसने कहा उड़ते आ रहे थे, प्रभुपाद ने कहा उड़ते आ रहे थे, आ रहे थे और आ गए। ये सच्ची घटना है भक्तों की, कुछ नहीं था लेकिन अपने आप आ गया, समय के ऊपर आ गया, जरूरत से पहले आ गया। तो भगवान भेज देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, न तो भीख मांगता है और न उधार लेता है। प्रभुपाद ने दो शब्द लिखता है, नेवर बैग और बारो, न भीख मांगता है और न क्या लिखा है, उधार नहीं मांगता है, भीख नहीं मांगता है। भगवान श्री कृष्ण एक माता बहुत बड़ी सेवा करती थी, बूढ़ी हो गई तो भगवान बालक छोटा एक बच्चा बन के आए, कहा माँ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सेवा आपकी करूँगा, तनख्वाह नहीं लूँगा, बड़ी सेवा करता था। एक दिन उस बुढ़िया का कोई रिश्तेदार आ गया, रोने के कहने लगी आप लोग हमारा पूछते नहीं हो, हम कैसे दुखी हैं। वो बच्चा भाग गया। अब कहीं कहाँ गए गोपाल गोपाल आया, बोला क्यों, बोला विश्वास नहीं था, दूसरे को कह रही थी तुम्हारा देखभाल करने वाला कोई नहीं है, भगवान घर में काम करने आया है तो तुम्हारे को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, दूसरे को कह रही थी मेरे देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नहीं नहीं अभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं, अभी किसी को नहीं बोलूंगी, बस भाई गोपाल इधर ही बैठ जा। हम क्या दूसरे को कहते हैं ये काम करेगा तब होगा, एक भगवान के ऊपर विश्वास, एकल कृष्ण ईश्वर आर सब व्यर्थ। कथाएं बहुत आ रही है, टाइम जा रहा है। एक गरीब था बेचारा, खेत में शहंशाह अकबर शिकार करते भूखा था, कुछ मिला नहीं, अलग हो गया, तो उस बेचारा ने सूखी रोटी खिलाई दी, छाछ पिला दी। उसने कहा मैं तो शहंशाह हूँ, तुम्हें कोई संकट हो तो मेरे पास आ जाना। वो चला गया, अकाल हो गया, उसको पहचान लिया राजा ने, रखा उधर रोका। वो उठ गया 4 बजे, देखा कि सुबह उठ के नमाज पढ़ रहा है अकबर हाथ ऐसे करके, ये भी अपना बेचारा जाप कर लिया। महाराज ने बुलाया कि तुम्हारे को क्या चाहिए, बोला आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, सुबह आप क्या कर रहे थे, बोला भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा था, दुआ मांग रहा था। बोला कुछ नहीं चाहिए, बस मैं जा रहा हूँ। बोला नहीं मुझे मालूम है तुम्हारा यहाँ अकाल पड़ा है, कुछ मांगने आए होगे। बोला तुम भी उससे मांग रहे हो, फिर तुमसे मांग के क्या करूं भाई, तुम खुद ही भिखारी हो तो तुम्हारे से मांग के क्या करूं, तुम ही ऊपर हाथ करके दे दो तो फिर तुमसे क्या मांगे। तो देने वाला तो एक गोपाल है, बाकी सब भिखारी है, ये बात समझ में आनी चाहिए। नींदड़ तो तू ब्याज सब मंगना, देने वाला एक भगवान है, बाकी सब मांगने वाले, ये बात समझ में आनी चाहिए। बरसात अपने समय पे बरसती है, भगवान की कृपा सदा बरसती, वो कभी कमी नहीं है उसमें, वो देगा, ये विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने आजीविका के लिए उसको परवाह नहीं, फिर क्या वो कोई उसके भगवान की सेवा में रुकावट डाले ये उसको स्वीकार नहीं है। क्या लिखा है इसकी, ये हिंदी में क्या लिखा है देखो, वो स्वतंत्र है अपने आजीविका के लिए, वो किसी अन्य को अपनी सेवा में बाधा डालना, कृष्ण भावना के कार्य में बाधा डालने नहीं देता, परंतु कृष्ण भावना के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। कैसी भी परिस्थिति हो, गर्मी सर्दी हो। 23वां श्लोक पढ़ते हैं, टाइम हो गया। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञाना अवस्थित चेतसा यज्ञः चर्त कर्म समग्रम प्रविलीयते, गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य, संगस का मतलब आसक्ति, आसक्ति से है मुक्त, ज्ञान अवस्थित चेतसा, और उसका मन और उसकी चेतना ज्ञान में स्थित है, और काम किसके लिए करता है, यज्ञ आचरत कर्म, अपना कर्म यज्ञ समझ के करता है, कर्म यज्ञ समझ के करता है, इसलिए समग्रम पर भी इसे सब कुछ अपने आप में समाप्त हो जाता है। भाई यज्ञ में सुहाग किया सब ज्ञान, उसके कर्म, उसका कर्म यज्ञ है, इसका अर्थ है। वो कैसे कर्म करता है, बोला यज्ञ के समान, तब यज्ञार्थ कर्मण हो अन्यथा कर्म बंधन, तो यज्ञ के लिए कर्म करता है, विष्णु के लिए कर्म करता है, कृष्ण के लिए कर्म करता है, उसके सारे कर्म, ये अकर्म की परिभाषा है, यज्ञ के लिए कर्म करना। तो यज्ञ के लिए कर्म, यहां यज्ञ शब्द आ गया, तो फिर यज्ञ की परिभाषा 24वें शब्द में है, और फिर विभाग दूसरा है, सारे यज्ञ ज्ञान में परिपूर्ण होते हैं, ये दूसरा विभाग कल शुरू करेंगे। तो इस श्लोक में क्या लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, यज्ञ की अग्नि कर्मों को भस्म कर देगी, यज्ञ के लिए काम करते हैं, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से, तीन गुण क्या करते हैं, द्वंद्व, जो द्वंद्व है क्यों है, प्रकृति के गुणों के कारण, द्वंद्व से ऊपर उठ गया, इसका मतलब प्रकृति के गुणों से मुक्त हो गया, तो वो मुक्त हो गया, किससे मुक्त हुआ, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से, ठीक है। और किसके लिए काम कर रहा है, कृष्ण के लिए, और प्रभुपाद ने एक सावधानी का शब्द लिखा है, देखो क्या लिखा है, कृष्ण के लिए जो विष्णु का स्रोत है, यज्ञ का अर्थ विष्णु है, लेकिन विष्णु का स्रोत कृष्ण है, लिखा है ऐसे कि नहीं, क्या है, आदि विष्णु कृष्ण है, इसका मतलब विष्णु कृष्ण से निकलते हैं, ऐसे विस्तार है, विष्णु कृष्ण का विस्तार है, इसलिए उसके सारे कार्यों को यज्ञ कहा जाता है, वो विष्णु कृष्ण के संतुष्टि के लिए है, इसलिए उसको कोई कर्म का बंधन नहीं लगता है। पूर्ण आहुति का श्लोक, ये विभाग आज पूरा करना है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्महुत्तम, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्म कर्म समाधिना। अब चक्रवर्ती पाद इसमें हमको इन शब्दों की परिभाषा सुना रहे हैं, आप सुन लीजिए, यज्ञ के लिए काम करता है, तो यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ क्या है, तो ये श्लोक कहता है यज्ञ क्या है, अर्पणम, अर्पणम का अर्थ है वो जो लकड़ी का शुरुआत होता है ना, जिससे डालते हैं उसको कहते हैं अर्पणम, अर्पणम का मतलब लकड़ी का, इतना देखा यज्ञ में होता है, जिसमें आगे गोल गोल होता है, शुरुआत कहते हैं उसको, उसको कहते हैं अर्पणम, हाँ सर्व कहते हैं, ऐसे दो तीन लकड़ी के होते हैं जिसमें सुहा डालते हैं, उसको कहते हैं अर्पणम, कहते हैं उसको, लकड़ी का चम्मच जिससे घी डाला जाता है अग्नि में, और जो अंदर डालना है घी, वो भी ब्रह्म, वो लकड़ी भी ब्रह्म, यज्ञ ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, हवि का मतलब घी, हवि घी, और जो अग्नि जिसमें डालते हैं वो भी ब्रह्म, अग्नौ ब्रह्म अग्नौ, ये सब ब्रह्म, लकड़ी का चम्मच भी ब्रह्म, घी भी ब्रह्म, आग भी ब्रह्म, और जो यज्ञ करता है वो भी ब्रह्म, जो इस प्रकार से सब चीजों को भगवान के संबंधित समझता है तो उसको कोई बंधन नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका सारा कार्य ब्रह्म कर्म समाधि ना, भगवान के ही लिए, वो भगवान की ही समाधि में, प्रभुपाद जी समाधि की एक अद्भुत परिभाषा बताते हैं, भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना खुली आंखों की समाधि है, भगवान का चरण देखना, फिर निपुर पहनाना, फिर कपड़े पहनाना, ये खुली आंखों की समाधि है, अब बंद करके अंदर देखते हैं, ये तो अर्च विग्रह की उपासना खुली आंख की समाधि है। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप पढ़ लेना कल, और यहाँ ब्रह्म अर्पण वाले श्लोक, और 7वें अध्याय में जाएंगे तब आपको, नहीं 9वें अध्याय में, ऐसा ही एक और श्लोक है, उसमें ब्रह्म की बजाय भगवान अपना नाम लेंगे, वो मैं हूं, ये आप बताएंगे। तो ये आप तात्पर्य थोड़ा लंबा है, कल पढ़ना, क्योंकि मैं भूखा नहीं रखना चाहता आपको। अब 25 से 33 कल करेंगे, उसमें है सारे यज्ञ दिव्य ज्ञान में परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा क्या होगी? अभी प्रसाद कहाँ है? हाँ, हमने तो सुना ही नहीं, देखा तो दूर की बात है।